इस ब्राह्मण परिवार में, इस जीवन में कौन से नियम, कौन सी मर्यादाएं हैं, उसकी चर्चा करेंगे। ऐसी 26 मर्यादाएं ए बी सी डी से लेकर तो जेड तक, जो कि हर एक को पता रहना चाहिए। बाद में ये नहीं कहना कि हमें तो पता ही नहीं, बाद में ये नहीं कहना कि हमें तो ये इसकी शिक्षा दी ही नहीं, बाद में ये नहीं कहना ये प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस है जीवन में जो आया है, टीचर ने पढ़ाया ही नहीं है। टीचर ने सब कुछ पढ़ाया है क्योंकि वो डियरेस्ट डैड भी है। अभी अभी आया था मुरली में, उसने सब कुछ बता दिया है, वो सारा ज्ञान का राज समझा दिया है। जिन्हें ज्ञान कंठ है उन्हें ज्ञान गंगा कहा जाता है। कल की मुरली साकार, तुम भूल गए। इग्नोरेंस ऑफ लॉ एक्सक्यूजेस नो वन। सड़क में गलत तरफ से चल रहे हो, वन वे में घुस गए और बाद में पुलिस से कह रहे मुझे पता ही नहीं था, तो छोड़ देता है क्या? फिर ये मत कहना कि भगवान ने ये बताया ही नहीं था। भगवान तो बता देंगे। गो एंड रेफर अव्यक्त मुरली 1972, डेट सहित बता देगा मैंने सब कुछ बता दिया था, पर तुमने पढ़ा नहीं था। गलती किसकी है? एडमिशन तुमने लेट ली। स्कूल जनवरी में चालू हो गई, तुम जून में आए, दिसंबर में परीक्षा है, और तुम कहते हो कि अब से मैंने दिसंबर तक जून से जो पढ़ा ये क्वेश्चन तो उसमें है ही नहीं। एडमिशन लेट तुमने ली है, पीछे जाना पड़ेगा। नियम मर्यादाएं सब कुछ उसने बता के रखी है, हमें पता नहीं था। गलती उसकी या हमारी? चलो गलती किसी और किसी की भी नहीं, परंतु लेट आए हैं तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। और नियम और मर्यादाएं जब जब हम धारण करेंगे, पालन करेंगे, एक एक मर्यादा की एक एक शक्ति हमारे अंदर जमा होगी। और दुनिया क्या कहती है इसकी हमें परवाह नहीं करनी है। उस मीरा ने कभी परवाह की थी क्या संसार की? उस राजस्थान में कभी स्त्रियों ने घूंघट नहीं उठाया? वहां पर सड़कों पर नाचने लगी थी, कैसा प्रभु प्रेम था। लोग कहे मेरा भाई बावरी, सासू कहे घर फोड़ी रे। दुनिया को जो कहना है कहने तो, जो मर्यादाएं हैं और जो नियम है और जो भगवान ने बताए हैं वह सर्वोपरि है, उनके ऊपर कुछ भी नहीं है। और ये संसार तो कुछ ना कुछ कहेगा ही। वो कहानी पता है ना, शंकर जी और पार्वती की, अपने नंदी बैल को लेकर चल पड़े दोनों साथ साथ। लोग कहने लगे कैसे मूर्ख दाम्पत्य है, बैल होने के बाद भी पैदल चल रहे हैं, ऐसे मूर्ख लोग हमने आज तक नहीं देखे। शंकर जी सोचते हैं बात तो सही कही, नंदी होते हुए हम पैदल, दोनों बैठ जाते हैं उसके ऊपर और चल पड़ते हैं। लोग कहते हैं अरे, अरे अरे इतने निर्दयी लोग, वो जानवर बेचारा कुछ कहता नहीं, इसके लिए कुछ भी करोगे? दोनों बैठ गए, मूक प्राणी पर ऐसा अत्याचार, एकदम से आहत होता है हृदय। दोनों उतरते हैं, शंकर जी पार्वती को कहते हैं कि आप ही बैठो, मैं पैदल चलता हूं। और आगे बढ़ते हैं, लोग कहते हैं कैसी नारी है, पति परमेश्वर पैदल और खुद आराम से बैठी हुई है। तो पार्वती सोचती है बात तो सही है, फिर शंकर जी बैठ जाते हैं, वो पैदल। पहला क्या बताया हमने, पहले वो बैठ जाती है तो लोग कहते हैं पति की सेवा करनी चाहिए और खुद बैठी हुई है। तो जब पति बैठ जाते हैं तो लोग कहते हैं पति पत्नी धर्म पत्नी होती है, उसकी रक्षा करनी चाहिए, उसकी ध्यान उसका ख्याल करना चाहिए। खुद बैठा है और पत्नी को पैदल चला रहा है, कैसा पति है, घोर नरक। वो सोचते अब क्या करें। फिर दोनों उतरते हैं और बैल को दो पैर शंकर जी पकड़ते हैं और दो पैर पार्वती पकड़कर चलने लगते हैं। लोग कहते हैं मूर्ख है तो ये, नीचे देख के चलो तो लोग कहते हैं ये तो ऊपर देखते ही नहीं, ऊपर देखो तो कहते हैं जमीन पर भी कभी देखा करो, यहां वहां देखो तो कहते हैं इनकी नजर का कोई ठिकाना नहीं है। आंखें बंद करके चलो, आंखें फोड़ लो तो कहते हैं कर्मों का फल है। तो ऐसे हम 26 नियम, नियम कहो मर्यादा कहो, सबसे पहला ए, ए फॉर अमृत वेला, प्रभु मिलन की वेला है, भगवान आए हुए हैं। वैसे तो सारा संगम युग ही गुड मॉर्निंग है, अभी अभी मुरली चली थी, बाप आते भी गुड मॉर्निंग में और जाते भी गुड मॉर्निंग में, परंतु उसमें भी विशेष समय है जबकि वातावरण शुद्ध होता है, पवित्र होता है, वो समय है सुबह सुबह उठ जाना और अशरीरी होना, बहुत सहज है। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, अमृत वेला स्वयं को परमात्म प्रेम से इतना भर दो कि सारे दिन भर किसी भी देहधारी का प्रेम तुम्हें नहीं खींचेगा। आत्मा की प्यास प्रेम की है, सुख की है, सुबह सुबह भरो उसमें परमात्म प्रेम, इतना भर दो, इतना भर दो। जब नहीं भरा जाता उसी दिन संसार की आत्माओं का प्यार खींचता है, देह खींचता है, संसार के संबंध खींचते हैं। प्रातस्मरामि हृदि संस्फुरदात्म तत्त्वम् सच्चित् सुखम् परमहंस गतिम् तुरियम् तद्ब्रह्म निष्कलमहम् न च भाति भूत संगम। मैं ये भूत संगम नहीं हूं, मैं वह शुद्ध आत्मा हूं। प्रातस्मरामि हृदि संस्फुरदात्म तत्त्वम्, उस आत्म तत्व का प्रातस्मरामि, सुबह सुबह स्मरण करो। सच्चित् सुखम् तद् ब्रह्म निष्कलमहम्, वही सच्चा सुख है, वही तुरिया अवस्था है चेतना की, द फोर्थ स्टेज ऑफ कॉन्शियसनेस, स्वप्न जागृत सुषुप्ति, और चौथी जिसका कोई नाम नहीं कहा है उसको तुरिया कहा है वेदों ने। तुरिया अर्थात सर्वोच्च अवस्था, द फोर्थ स्टेज ऑफ कॉन्शियसनेस। इस देह से परे हो जाओ, इस संसार से परे, और उस अव्यक्त वतन में चले जाना। दादी का संदेश भी है बाबा का, अमृत वेला क्या कर दो, शक्तिशाली बना दो, पावरफुल। नींद का अंश मात्र जिसमें ना हो, ऐसी जागृत अवस्था, तस्मात् जागृत जागृत जागृत। यदि नींद आ रही है, यदि साधारण हो रहा है और ऐसी शक्तिशाली अगर अमृत वेला करना है तो उसकी तैयारी रात से चालू होगी। यदि टीवी देखते देखते अगर मोबाइल पर व्हाट्सएप में लगे हुए हैं और सोशल मीडिया में लगे हुए हैं और इंटरनेट पर बिजी है और उसी अवस्था में सो रहे हैं, रात में सोते समय जो अंतिम संकल्प है, उठते समय वही प्रथम संकल्प है। सोने की विधि क्या है? कम से कम आधा घंटा पहले सारा डिजिटल ऑफ कर दो, जिनको इमरजेंसी नहीं है रात में उन सब से अलग कर दो। तैयारी करो स्वयं की, देह रूपी गाड़ी को गैरेज में डालो और ड्राइवर चले ऊपर उस अव्यक्त वतन में, उसी के साथ तो फिर सतोप्रधान नींद होगी, शक्तिशाली नींद होगी और अपने आप आवाज आएगी अव्यक्त वतन से और नींद खुलेगी। कब तक अलार्म का सहारा लेते रहेंगे? इतने साल हो गए फिर भी, परंतु हां न उठने से लेना अच्छा है। एक भाई था, अलार्म बजता था, लगा के रखता था रोज 3:30 बजे, परंतु जैसे बजता था हाथ अंदर से निकलता था बाहर और बंद। कैसे नींद खुले? ठंडा ठंडा मौसम, रिमझिम बारिश, अभी तो 3:30 बजे, अभी टाइम है थोड़ा सा, 4:05 अभी है, 5 मिनट सो जाओ और अगली बार जो 5 मिनट के बाद आंख खुलती है तो 5 बजे है। इतने जल्दी 5 मिनट कैसे चले गए पता ही नहीं चलता है। अब भी तो आंख लगी थी, जस्ट 5 मिनट बाकी थे, सोचा बस अभी उठता ही हूं और देखा 5 मिनट और फिर दुख और फिर पश्चाताप। आज फिर वही दिन की शुरुआत ही दुख से। तो उस भाई ने सोचा कि क्यों ना बाजू में जो खटिया खाली है उसके नीचे रख देता हूं अलार्म वॉच, ताकि उठूंगा फिर नीचे घुसूंगा फिर बंद करूंगा तो अब तक तो नींद उड़ जाएगी। तो वैसे किया, फिर दूसरे दिन 3:30 बजे जोर से बजा, एकदम आंख खुली, वो बजी रहा है, उठा, रजई फेंकी और फिर नीचे घुसा, उसको बंद किया और वहीं सो गया। मेथड फेल हो गई। अगर नींद पूरी नहीं हो रही है, फ्रेश नहीं हो रही है, कोई कारण है, कोई शारीरिक बीमारी है, दर्द है, उसका इलाज कराओ, किसी विटामिन्स की कमी है, कोई ब्लड टेस्ट कराओ। दिनचर्या में नींद नहीं हो रही है उसको सेट करो। ब्राह्मण जीवन में दो ही चीजें सबसे ज्यादा सेट करनी होती है, एक नींद और दूसरा भोजन। योगी अर्थात जिसने इन दो चीजों को ठीक कर दिया। और अच्छे योग के लिए दो चीजें खाली चाहिए, बुद्धि और पेट। रात में बहुत स्वादिष्ट भोजन बना है, डाले जा रहे हैं, खाओ खाओ, पता नहीं मिलेगा कि नहीं। आकंठ यहां तक डालो डालो और डालो, और फिर नींद भी अच्छी 5-5:30 बजे तक आ जाती है। फिर सोचते हैं ऐसा क्यों हो गया पता नहीं। व्यक्ति जितना खा रहा है उससे आधा पेट खुद का भरता है और आधा डॉक्टर का। बहुत रहम दिल है, भूखा नहीं रखना चाहता किसी डॉक्टर को। योगी अर्थात अल्पहारी। संसार में लोग बीमार कम खाने से है या ज्यादा खाने से? जितना खा रहे हैं शायद उसकी आवश्यकता नहीं है। मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात स्वात से परे अव्यक्त महावाक्य है। जस्टिस कृष्णा अय्यर, द कॉन्शियंस कीपर ऑफ इंडियन लॉ जिनको कहा जाता है, जिन्होंने कम से कम 80 किताबें लिखी है लॉ पर और 100 वर्ष की उम्र तक जिए, 2013 में शरीर छोड़ा, वो कृष्णा अय्यर एक बार मधुबन में आए थे, शायद 83 की वो कॉन्फ्रेंस थी, ओम शांति भवन अभी अभी बना था, इंद्रप्रस्थ में रहने को कमरा दिया गया था, जगदीश भाई बाजू में थे, उनकी आदत थी सुबह 2 बजे उठने की, उठकर किताबें लिखते थे, लॉ की किताबें, रात में कल्चरल प्रोग्राम होते थे, वो कहते थे मुझे माफ कर दो मैं नहीं आ सकता, उन्हें भगवान से मिलना नहीं था सुबह, अपने नियम के पक्के थे, तुम करो तुम्हारे कल्चरल प्रोग्राम पर मुझे तो 9 बजे सोना है, इसके लिए माफ कर दो। एक संसार का व्यक्ति, एक लौकिक व्यक्ति अपनी धारणाओं में अपनी आदतों में इतना पक्का है और हम कभी 3, कभी 3.25, कभी 3.5, कभी 4.25, कभी 4, कभी 4.25, कभी 4.5, तो कभी 5 और कभी 6.5। क्यों क्यों ऐसी हलचल, क्यों हम नियमों में स्वयं को नहीं बांध पाए और सर्व समस्याओं का हल अमृत वेला है। दिन भर कितना भी सोचते रहो एक समस्या का हल नहीं मिलेगा, अमृत वेला जरूर मिलेगा। प्लेन बुद्धि होकर बैठ जाओ, टचिंग्स आएगी ऊपर से, अवतरित होगी क्या करना है क्या नहीं करना है। नहीं तो वही जो आज सुबह की मुरली में था, यथार्थ क्या अयथार्थ क्या, सोचते रहते, सीट से नीचे आए हुए हैं, चिल्लाते रहते, बाबा से मांगते रहते, बाबा शक्ति दो, अमृत वेले की किताब है छोटी सी यज्ञ की बनी हुई, जिसने पढ़ी नहीं है वो पढ़ना चालू करो, किताब लो कहीं से भी मिल जाएगी और 1 मास तक उस किताब का अध्ययन करो, केवल एक ही किताब, एक एक पैराग्राफ उसके ऊपर सोचो चिंतन करो, जो लिखा है वो बाबा के अव्यक्त महावाक्यों का संकलन है। पहले ज्ञान बढ़ाओ अमृत वेले के विषय में। तो सबसे पहला नियम है अमृत वेला, जो अब तक यदि नहीं हो रहा है तो आज से इस भट्टी से पक्का करना है, सोचना है, बैठना है, कारण ढूंढो नींद के, क्या कारण है, क्यों नींद आ रही है, क्यों नहीं उठ पा रहे, क्यों थकान महसूस होती है उठते ही, क्यों शरीर में दर्द, क्या है, कुछ करो, क्योंकि सारी समस्याओं का हल अमृत वेला है। ये फाउंडेशन है, बाबा ने कहा है अमृत वेला, गाड़ी को पटरी पर डाल दो, अपने आप दिन भर में क्या करना है, कब तक सोचते रहोगे, पटरी पर डाल दो, पटरी पर दिन भर चलती रहेगी। ब्रह्म मुहूर्त, दूसरा नियम मर्यादा, बी फॉर ब्रह्मचर्य। संपूर्ण पवित्रता, संपूर्ण ब्रह्माचर्य, इस नियम का आधार स्तंभ पवित्रता है। यदि बार बार ब्रह्मचर्य खंडित हो रहा है, बार बार दृष्टि और वृत्ति चलायमान हो रही है और बार बार विषयी वासनाएं मन में आंदोलित हो रही है, तो कैसे इस ज्ञान को ग्रहण किया जाएगा, कैसे पवित्रता का आनंद लिया जाएगा, कौन से वो कारण है, कौन से वो ट्रिगर्स है, कौन सी वो बातें हैं जिससे मन में हलचल होती है, क्या कोई व्यक्ति है, क्या कोई वस्तु है, क्या कोई टेक्स्ट है, वीडियो है, ऑडियो है, म्यूजिक है, सॉन्ग है, क्या है, संबंध है, गलत संबंध जोड़ के रखा है। तुम्हारा आपस में एक ही संबंध है, भाई और बहन, बस। किसी को विशेष भाई बनाने का पुरुषार्थ नहीं करो, किसी को बहन ही रहने दे, विशेष बहन बनाने का पुरुषार्थ नहीं करना। स्पिरिचुअल फ्रेंडशिप सबसे बड़ी माया है, क्योंकि उस संबंध में यदि ज्ञान की तलवार बीच न हो, चाहे वो पति पत्नी हो या ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी, कोई भी दो व्यक्ति, उनके बीच में यदि ज्ञान कटार ना हो तो काम कटार चलेगी। उनके बीच में यदि डिटैचमेंट ना हो तो फैमिलियरिटी बढ़ेगी। फैमिलियरिटी का नशा, बाबा के वाक्य है, कम नहीं है। दोस्ती, शेयरिंग, एक मैसेज इधर से एक मैसेज उधर से, कभी ये नाराज कभी वो नाराज, ऑल स्पिरिचुअल फ्रेंडशिप इन द लॉन्ग रन मोर ऑफन देन नॉट टर्न इनटू सेक्सुअल फ्रेंडशिप्स। इसके लिए सावधान, नियम मर्यादा है, डिस्टेंस डिटैचमेंट। बहुत ज्यादा घनिष्ठता, टू मच इंटीमेसी, धीरे धीरे भगवान से दूर ले जाएगा। और जब फंस जाएंगे तब याद आएगा, फंस गए, फिर निकलना मुश्किल है। जगदीश भाई जी एक कहानी बताया करते थे। कन्या है, पनघट पर है, पानी भर रही है। एक कुमार आता है उधर से, कहता है मुझे प्यास लगी है, पानी दो। वो कहती है पानी मैं दूंगी, एक शर्त है, अंग से अंग न लगे तो ही मैं दूंगी। वो कहता है हाँ मंजूर है, पानी दो। वो झुकता है नीचे, वो घड़े से पानी डालती है और वो पीता है। प्यास बुझती है और चला जाता है। कुछ दिनों के बाद दोनों के माँ बाप दोनों की शादी तय कर देते हैं, उनको पता ही नहीं, शादी हो जाती है। दोनों आमने सामने आते हैं और जैसे ही आमने सामने आते हैं, वो कन्या कहती है अपना वादा याद रखना। अनटच्ड प्यूरिटी, ऐसा अनटच्ड ब्रह्मचर्य, इसको कोई स्पर्श ना करे। ये तो केवल ब्रह्मचर्य है जो कि आधारशिला है संपूर्ण पवित्रता की। पवित्रता बहुत बड़ी चीज है, उसमें बहुत सारी बातें आती है, और उससे भी बड़ी चीज है ब्रह्माचर्य, जो कि हम अगली क्लास में वो भी देखेंगे कुछ बातें। वो कौन से ट्रिगर्स है, पहले उसकी लिस्ट निकालो हर एक, और उसको समाप्त कर दो हमेशा के लिए। नाम निशान न रहे उसका। अगर वो संबंध है और जो गलत दिशा में जा रहा है, उस संबंध को वहीं खत्म कर दो। कोई आवश्यकता नहीं है ऐसे संबंध की। ज्ञान बढ़ाओ पवित्रता के विषय में। आत्मा जब सो जाती है, थक जाती है, तभी अपवित्रता के संकल्प चलते हैं। जैसे सभी यहां जब बैठे हैं तो शायद कोई अपवित्रता का संकल्प ना आए, पर जैसे ही यहां से बाहर संसार का वातावरण है, प्रभाव है मीडिया का, हवाओं में वासनाएं हैं संसार में, ऐसे वातावरण में स्वयं को सुरक्षित रखना साधना है, तपस्या है। बड़े बड़े योगी और तपस्वी गिर गए हैं इस एक कारण से। आज तक 1936 से लेकर तो अब तक इस यज्ञ से जो भी बाहर गया है, हमेशा एक ही कारण रहा है। ऊपर से कारण दूसरे दूसरे थे, ऊपर से कुछ कुछ कारण थे, लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, इसका ठीक नहीं, उसका ठीक नहीं, डिस्टर्ब हो गए। कारण अंदर से हमेशा एक ही है, काम, दमित कामनाएं। ऊपर से केवल दूसरा दूसरा दिखाई दे रहा है। इसके लिए दूसरा नियम है, दूसरी मर्यादा, संपूर्ण ब्रह्मचर्य। ये जो सारी बहनें हैं, भाई क्या समझेंगे उनको, देवी शिव शक्ति। अभी अभी मुरली चली थी, और कुमार अपने आप को क्या समझे भाई, महावीर। महावीर है राम के और शक्ति है शिव की। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपे निसंसिताम, या देवी सर्वभूतेषु दया रूपे निसंसिताम। मां देखो उनको, जगत माता देवी और शिव शक्तिया। यदि किसी मंदिर में कोई भाई जाए और उसके मन में जो देवी है उसके प्रति विकारी भावनाएं उत्पन्न हो जाए और वहां के सभी लोगों को पता चल जाए वो इस भावना से आया है, तो क्या करेंगे उसके साथ मंदिर के लोग, क्या करेंगे, रखेंगे वहां? जिस सेवा केंद्र पर हम जा रहे हैं और जिस सेंटर पर ये सारी हमारी बहनें हैं, कौन है वो? शिव शक्तियां है, वही है जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है। उनके प्रति कैसी भावनाएं चाहिए, कितनी महान, कितनी श्रेष्ठ। अगर कोई माता भी सोचे कि ये हमको क्या सिखाएगी, इतनी छोटी सी कन्या अभी अभी जो आई है, छोटी नहीं है, निमित्त किसने बनाया उसको, जो बाल ब्रह्मचारी है, बाल ब्रह्मचारिणी है, उसकी बुद्धि कम हो सकती है, हो सकता है उसका शिक्षण उतना नहीं है, हो सकता है वो तुमसे कम जानती है, हो सकता है उसमें परिपक्वता मैच्योरिटी कम है, परंतु अनटच्ड है। जीवन भगवान को दिया है, अपने यौवन को यज्ञ की वेदिका में अर्पित किया है, स्वाहा किया है यज्ञ की वेदी पर सर्वस्व। वो साधारण आत्माएं नहीं हो सकती। इसके लिए उनके प्रति यही सोचो, ये वही है जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है, उनके विरुद्ध षड्यंत्र रखने करने का प्रयत्न नहीं करना। ये सेवा केंद्र का नियम है। देखो रखा किसने है, भगवान गुरु भाई कहते हैं उनको, चुनी गई आत्माएं हैं। दूसरा नियम संपूर्ण ब्रह्मचर्य, आत्मिक दृष्टि का अभ्यास, भावनाओं का परिवर्तन करना है। बहुत देख लिया पत्नी को पत्नी और पति को पति, अब आत्मा देखो। ये कहना भी देहभान है कि ये मेरा युगल है, तीसरा सी सेंटर एटमॉस्फियर, अर्थात सेवा केंद्र का, ये जो नियम बता रहे हैं ये सेवा केंद्र के लिए नियम है, जो कि सेंटर पर स्टूडेंट्स आते हैं उनके ये नियम है। सेंटर के वातावरण को अपने संकल्पों से दूषित नहीं करना है, अपने श्रेष्ठ संकल्पों से शक्तिशाली बनाना है, ये हर सेंटर निवासी की जिम्मेवारी है, अंदर या बाहर जो भी जहां रहने वाले हैं। ये परमात्मा यज्ञ है, मिनी मधुबन तीर्थ है ये, उसके वातावरण को हमें दूषित नहीं करना है, शक्तिशाली बनाना है। वहां जाकर यहां की बातें, वहां की बातें, व्यर्थ बातें, संसार की बातें, ये सब नहीं करना है। आश्रम है, वहां जाकर तपस्या करनी है। लोग वहां पर जाकर बिजनेस को वहां खड़ा करते हैं, ये भूल रहे हैं कि इस वातावरण को मुझे शक्तिशाली बनाना है, इस सेंटर को मुझे निर्विघ्न बनाना है। क्योंकि जो हमने पाया है, बहुत सारी आत्माएं अभी आना बाकी है, उनको भी तो दिलाना है। वो आएगी कैसे? वायुमंडल से। जितना वायुमंडल शक्तिशाली होगा, जहां जहां जिस जिस सेवा केंद्र का वायुमंडल जितना शक्तिशाली, उतनी ही तेज गति से वहां सेवा होगी। सेवा इस आधार से नहीं होगी कि वहां क्या डेकोरेशन है, कितना बड़ा है, रिट्रीट सेंटर है या छोटा सेंटर है, कमरे कैसे हैं, पर्दे कैसे हैं, ये सब गौन है। जिस सेवा केंद्र में जितनी अधिक पवित्रता आत्माएं खिंच खिंच कर आएगी, जिस सेवा केंद्र का वायुमंडल जितना अधिक शक्तिशाली, आत्माएं खिंच खिंच कर आएगी। फिर सामने वाला कोई भी हो, अभी अभी मुरली चली थी साकार, अगर मुरली चलाने वाला मूंज जाता है तो मैं उसमें प्रवेश करता हूं और फिर मुरली चलाता हूं, और फिर तुम कहते हो आज मैंने अच्छी मुरली चलाई, बाबा कहते हैं अरे कल क्यों नहीं चलाई थी फिर? जहां जितना समर्पण भाव होगा, वो वातावरण उतना शक्तिशाली होगा। हर एक सेवा केंद्र निवासी, हर एक सेवा केंद्र पर जाने वाले सारे स्टूडेंट्स समझे, ये मेरा सेवा केंद्र है और मुझे इसका वायुमंडल शक्तिशाली बनाना है। पहले मैं ना कोई व्यर्थ बात करूंगा, वहां पर जाकर तपस्या करूंगा और तप से उस वायुमंडल को शक्तिशाली बनाऊंगा। सी, अगला है डी। डी अर्थात डिवाइन फैमिली, ये प्रभु परिवार है। इस परिवार में अवगुणों को नहीं देखना है, इस परिवार में ये नहीं देखना ये कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसने क्या किया, उसने क्या किया, इसमें भी ये है, ये 40 साल से, ये 30 साल से फिर भी नहीं कर रहे, हम क्यों करें? दूसरों को नहीं देखना है, कोई करे ना करे तुम्हें करना है। हम ये सोच के रहे कि ये इतने सालों से फिर भी नहीं करे, अरे उनका सब जमा है, समय आएगा तो तुरंत अशरीरी बन जाएंगे, अभ्यास है। तुम्हारा क्या अभ्यास है? अभी अभी आए आए बरबर सेवा में लग गए, तपस्या जमा ही नहीं है, और आए बरबर अवगुण देखने लगे। बाप से प्यार अर्थात इस परिवार से प्यार, कोई कहे कि मुझे भगवान से बहुत प्यार है पर उसका ये परिवार मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि सारे ब्राह्मण बहुत ही स्वार्थी है, पॉलिटिक्स है। तो क्या कहेगा भगवान? ऊपर से फूलों की वर्षा करेगा? मेरी तो स्तुति करता है, मेरे परिवार की ग्लानी करता है। यह दैवी परिवार है। और एक बात, हमारे हिसाब किताब संसार की आत्माओं से कम है, इस परिवार की आत्माओं से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इन्हीं के साथ रहे हैं, हम कभी राजा थे वो भी राजा थे, हमने आक्रमण कर दिया उसके राज्य पर, उसको हरा दिया, सारा परिवार खत्म कर दिया उसका। अभी वही हमारे ही सेवा केंद्र, हमारे ही घर में आके बैठा है, पति बनकर, पत्नी बनकर, बच्चा बनकर। ये ब्राह्मण परिवार ही एग्जामिनेशन हॉल है और एक एक ब्राह्मण आत्मा पेपर है। ये परिवार ही क्या है? एग्जामिनेशन हॉल और एक एक ब्राह्मण आत्मा पेपर है। और हर समय ये संघर्ष रहेगा, परंतु हिसाब किताब की भी यात्रा है, जैसे बाकी यात्राएं हैं जीवन की, बीमारी की यात्रा। यहां से बीमारी ए से चालू हुई बी तक, ये टाइम से चालू हुई वो टाइम तक तक, ही कैंसर हो गया, किडनी खराब हो गई, डायलिसिस चालू हो गया, बीमारी पॉइंट यहां से यहां, या फिर चालू ही है, जैसे वो यात्रा है। एक जीवन की यात्रा है जन्म से मरण तक, एक बीमारी की यात्रा है, वैसे हिसाब किताब की भी यात्रा है। उसका भी अपना ही टाइम पूरा नहीं होगा तब तक वो चलेगी, इसलिए इस यात्रा को भी सुखदायी बना देना है। वो सब होने दो चुप तू, हम खुश रहे, हमारी अपनी साधना चालू रहे। सभी के लिए शुभ भावना। जिसको जिसको हमने दुख दिया है, दर्द दिया है, पीड़ा दी है, सताया है, निंदा की है, ग्लानी की है, अपशब्द बोले हैं, अपमानित किया है, हराया है, हमारे हम जमींदार थे, बेचारा वो किसान था, उसकी जमीन हड़प ली थी हमने, बेचारा परिवार तड़प तड़प के भूखों मर गया था, अब वही हमारे ही ऑफिस में आकर बैठा है हमारा बॉस बनकर, तो छोड़ेगा क्या तुमको? वही जिसको सताया था पालने में आया है छोटा सा बच्चा बनकर, हम बड़े खुश हो रहे, कितना मीठा दिखता है, गाल कितने अच्छे हैं, पर उसके हाथ में तलवार है, वो भी देख लेना, तलवार लेकर आया हिसाब चुकतू करने। सारे हिसाब किताब यहां चुकतू हो रहे हैं, उसकी भी यात्रा है, उसको भी खुशी से पार कर लो। नए बॉन्डेजेस अब क्रिएट नहीं करो यहां पर, इसके लिए डी इज फॉर डिवाइन फैमिली। अगला ई, एक्सचेंज ऑफ मनी सेंटर पर लौकिक व्यवहार करना, पैसों की लेन देन, बिजनेस खड़ा करना, बिजनेस की बातें करना। ये योग आश्रम है, इसको ट्रेड मार्केट नहीं बना देना है, शेयर मार्केट। यहां आ रहे मुरली हो गई, मुरली होते ही चार लोग बैठ के इधर उधर की बातें कर रहे हैं, लेन देन कर रहे पैसों की, ये नियम नहीं है ना ही मर्यादा है यहां की, इसका ध्यान रखना है। एक्सचेंज ऑफ मनी, एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट्स, एक्सचेंज ऑफ वर्ल्डली थिंग्स, और फिर बंधन बना देना। हाँ, किसी को बहुत आवश्यकता है तो उसको पैसे हम दे सकते हैं, परंतु इस भाव से दो कि फिर वो उससे अपेक्षा नहीं है कि वापस ले। जैसे एक भाई ने अनुभव सुनाया, सेंटर के एक दूसरे भाई ने उससे पैसे मांगे, 5,000 रुपए दिए, और जिसने लिए पैसे वो भूल ही गया उसको पैसे वापस देने। तो जब भी दोनों योग में बैठते थे, एक भाई पीछे वो भाई बैठा है योग में, और जैसे जिसने पैसे लिए थे वो याद सामने आके बैठ जाता, तो उसको खाली 5,000 रुपए, 5,000 रुपए, 5,000 रुपए, कोई तो उसको याद दिलाए कि मेरे पैसे दे, और बोलना भी अच्छा नहीं लगता है, पर वही याद 5,000 रुपए। उधर योग शिव बाबा के साथ वो सामने आके बैठा है, फिर सोचे अमृत वेला, सोचा छोड़ो इसको, माफ कर दो, छोड़ो, जाने दो। फिर दूसरे दिन मुरली में बैठे और सामने ही आके बैठ गया, मुरली रह गई बाजू में, और 5,000 रुपए, 5,000 रुपए, 5,000 रुपए, अरे दे दे, अरे दे दे। अगर देना ही है दे दो, और फिर भूल जाओ। अब ये अपेक्षा नहीं रखोगे ये देगा, या तो फिर दो ही मत, ये सबसे बेस्ट है। परंतु कभी कभी हम ब्राह्मण परिवार के अंदर की बात कर रहे हैं, बाहर की नहीं, इधर अंदर की कोई एकदम जरूरतमंद है, इमरजेंसी है, दे दिया और फिर भूल जाओ। हाँ वो दे दे तो ठीक, नहीं दे फिर भी ठीक, नहीं तो हम बेचैन और वो मस्ती से है, वो तो भूल ही गया, उसको याद ही नहीं। फिर स्पेशल योग करो उसके लिए, वाइब्रेशन दो, दे 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 दे, एक्सचेंज ऑफ मनी। ई एफ, एफ फॉर फूड, भोजन का नियम। खाली ब्राह्मणों के हाथ का खा लिया और हो गया, ऐसा नहीं है। पैसा कहां से आ रहा है भोजन जो बना रहे हैं? एक नंबर का है, दो नंबर का है, किसी का शोषण हो रहा है, किसी को दुख दिया जा रहा है, कैसे आ रहा है? पहली बात, कैसे कमाया जा रहा है? परिश्रम से या झूठ से, बेईमानी कर कर? अगर सब कुछ कर रहे, बाबा को भोग भी लगा रहे सब कुछ, परंतु पैसा काला धन है, शक्ति नहीं मिलेगी। दूसरा, भोजन बनाने वाले की स्थिति कैसा, किस अवस्था में भोजन बना रहे, किन संकल्पों के साथ भोजन बनाया जा रहा है? समर्पण भाव है क्या? ये भाव है कि बहुत टेस्टी बने और सब लोग मेरी बहुत तारीफ करें, और नहीं करे तो उदास। इतना अच्छा भोजन बनाया, चुपचाप खा के चले गए, बोला भी नहीं बहुत अच्छा था, थोड़ा तो बोले, झूठी बोल दे। समर्पण भाव और याद, दोनों चीजें चाहिए वहां पर। सकाश देते हुए स्वमान के साथ, दूसरा। तीसरा, जाति दोष भोजन में कौन सा है? राजसिक, तामसिक, सात्विक, क्या है? बहुत मसाले डाले जा रहे हैं, और डालो, हर चीज को तेल से गुजारो, बहुत तेल डालो, बहुत नमक डालो, बहुत मसाले डालो, बहुत मिर्च डालो, यह सात्विक है क्या है? राजसिक, एक्साइटमेंट कॉज करने वाला है, थोड़ा थोड़ा खोड़ डालते डालते हथौड़ा लग जाता है, जब तक करते नहीं कईयों को मजा ही नहीं आता है, ऐसा आवाज निकलना चाहिए। चावल बने परंतु मजा नहीं, उसको तेल से गुजारो तो हाँ अभी ठीक है, छोक लगाए हुए ये ठीक लगते हैं। दाल बनी है परंतु देखते ही उदासी, छोक लगाओ और डालो उसमें कुछ 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 कुछ, हजार चीजें डालो, उसको बहुत टेस्टी बनाओ, हाँ अब ब्रह्मा भोजन टाइप लग रहा है। जाति दोष, हाँ चलो वो ठीक है, नॉनवेज कर छोड़ दिया, प्याज लहसुन वो सब छोड़ दिया, पर इसके पीछे इतना उसमें डाला जा रहा है, गरिष्ठ भोजन, भारी करने वाला, फिर स्वास्थ्य, स्वास्थ्य पर क्या उसका असर, फिर गैस और एसिडिटी। हम देखते हैं मधुबन में जब भी ब्रह्मा भोजन होता है उसके दूसरे दिन दो तीन भाई तो आ ही जाते हैं लूज मोशन के साथ, मजा तो बहुत आया पर अब ये भी है फिर सच्चाई। चौथा, भोग लगाना। इस सभा में कितनी माताएं हैं जो रोज भोग लगाती है? माताएं, कितनी माता है जो बिल्कुल भोग नहीं लगाती, वो कहती नहीं नहीं हम पहले खा लेंगे, बाबा अपने आप खा लेगा, ऐसी कौन है? और फिर बाकी, अभी तो थोड़ो नहीं हाथ उठाया तो बाकी उठाओ आप। माता है, माता है, भाइयों के पास आएंगे, 24 घंटे में एक बार भोग अवश्य लगाना है, आज से या कल से, आज से ठीक है, आज रात से चालू कर देना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम योम्या भक्त्या प्रेष्यति. हे अर्जुन, जो पत्र पुष्प और फल मुझे अर्पण करता है वो मैं अनन्य भाव से स्वीकार करता हूं. मुझे तुम्हारा भोजन नहीं चाहिए, भाव चाहिए, भावना चाहिए. वो भाव का भूखा है, प्रेम का प्यासा है. कैसी माता है, शिव बाबा को बच्चा बनाया कि नहीं बनाया और वो भूखा और हम खा रहे. गीता में चोर कहा है ऐसे व्यक्ति को. उसे तो झूठे शबरी के फल भी बहुत प्रिय है. दुर्योधन का मेवा त्यागो साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई. प्रेम चाहिए उसे, और वो भी योग का एक समय हो जाएगा. अनन्य भाव से उसके सामने रखो, उसको खिलाओ और फिर उसे स्वीकार करो. ये जो उतावलापन है, अभी अभी बना और अभी अभी खा लो, ये भी थोड़ा कम होगा. थोड़ा टाइम जा रहा है ना बीच में, नहीं तो इतना टेस्टी बना है और उसकी सुगंध, और कब खाऊं और कब टूट पड़ूं उसके ऊपर. थोड़ा तो कम होगा. तवा तू माउथ, बिल्कुल अभी के अभी उधर से इधर ही चाहिए. प्रेम चाहिए उसे, प्रेम. प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अभी अंतर मल कबहु न जाई. अंदर का मल नहीं जाएगा जब तक प्रेम न हो. समर्पण. और फिर और एक स्टेज है, खाना. याद में स्वीकार करना. एक है बातें करते करते खाना, टेबल टॉक. क्रिकेट में क्या हुआ, पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है. कोई कोई ऐसे भी है, टीवी देखते देखते खाते हैं. कहते हैं हम बाबा को याद भी कर रहे हैं और भोजन भी कर रहे हैं. नीचे देखते हैं बाबा को याद करते हैं, ऊपर देखते टीवी खाते. नीचे देखते हैं बाबा को याद करते हैं और ऊपर देख के टीवी देखते हैं. दोनों काम बैलेंस. झूठ चल ना सके यहां तो. सभी माताएं भोग लगाएगी, दो बार कौन भोग लगाते, ऐसे भी होंगे कोई कोई. तीन बार, अरे बाप रे. बड़ी तपस्या है. अच्छा, भाई में से कौन कौन भोग लगाते अब ये बताओ. अरे वाह, भाई भी इतने सारे भोग लगाने वाले. और कुमार स्पेशल, जो कुमार है, जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, वो हाथ खड़ा करो. हाँ, ये है पावरफुल ग्रुप. चार थालियां भगवान के पास सूक्ष्म वतन में आई. पहली थाली आई मधुबन से, भोजन के पैसे देने वाले कोई और, भोजन लाने वाला कोई और, भोजन बनाने वाला कोई और, भोग लगाने वाले कोई और, परोसने वाले कोई और. ये पहली थाली आई. दूसरी थाली आई सेवा केंद्र से, भोजन के पैसे देने वाले कोई और, भोजन लाने वाला कोई और, भोजन बनाने वाला शायद वही जिन्होंने भोजन लाया बहने, भोजन बनाने वाले शायद वही या कोई दूसरी बहन, भोग लगाने वाली वही या फिर कोई दूसरी बहन. ये एक दूसरी थाली आई. तीसरी थाली आई गृहस्थ से, भोजन कमाने वाले स्वयं, लाने वाला स्वयं, बनाने वाली युगल शायद या वो खुद ही, भोग लगाने वाला वो खुद या फिर माताजी. ये एक थाली आई. और एक चौथी भी थाली आई बाबा के पास, एक कुमार के घर से. भोजन कमाता खुद, लाता खुद. भोजन बनाता खुद, भोग लगाता खुद. अब बताओ सबसे ज्यादा थाली किसकी पसंद आएगी बाबा को. तो कुमारों के लिए ताली बजा दो एक बार. स्वयं स्वयं का भोजन बनाना सबसे बड़ी साधना है और सबसे शक्तिशाली साधना है. जो ये करे वो स्वयं ब्रह्मचर्य की साधना में शक्तिशाली हो जाता है। अगला जी, नियमावली में एक नियम ये भी है, जिन्होंने नियमावली पढ़ी होगी, कई सेंटरों पर 2-3 मास में एक बार पढ़ी जाती है, उसमें तो बहुत सारी चीजें हैं, कुछ कुछ बातें हमने वहां से निकाली है। जी अर्थात गिविंग गुड विशेस, ब्लेसिंग्स एंड हैप्पीनेस, दुआएं, शुभ भावना, शुभकामना और खुशी देना, ये मर्यादा है इस यज्ञ की। विशेष रूप से ये पॉइंट है, एक सभी के प्रति शुभ भावना है, किसी के प्रति दुर्भाव नहीं। कैसा भी कोई हो, क्या भी कोई हो, बाबा कहते कैसा भी कोई आ जाए उसके प्रति शुभ भावना, कोई शत्रु बनकर आए उसे उसे शिव का मित बनाएंगे, हम बड़े चलेंगे क्या निर्भय होकर। गीत सुना है ना, सुंदर गीत है, सूरज भाई का लिखा हुआ यज्ञ में। काटे जो आए पथ पर उसे फूल बनाएंगे, कोई शत्रु बनकर आए उसे शिव का मित बनाएंगे। कैसी भी भावना से हरेक के प्रति शुभ भाव, हरेक के प्रति शुभकामना। ब्रह्मा बाबा को लोगों ने क्या क्या कहा, सिंध ऑब्जर्वर नाम का न्यूज़पेपर था, लेचरी एंड सॉर्सरी नाम के शब्दों का प्रयोग किया। लेचरी अर्थात वह व्यक्ति जो कामांध है, सॉर्सरी अर्थात जो जादू टोना करता है। इंग्लिश न्यूज़पेपर में 10 ब्रह्मा वाक्य थे, उसमें यह करने वाला यह व्यक्ति है। अपमान किया लोगों ने, ग्लानी की, सब किया, कोर्ट में केस की क्या ब्रह्मा बाबा ने, मानहानि की। लोगों ने कहा भी बाबा आप करो, बाबा ने कहा वो भी बच्चे हैं, सभी बच्चे ही बच्चे हैं। जब ब्रिज खोटी में आए थे तो सांप बाबा के पैर में लपेट गया था, बाबा ने कहा बच्चे को दूध पिलाओ, किसको, सांप को। शुभ भावना, शुभ कामना, खुशी और दुआएं, जिसका भी कल्याण हो जाए उसका भी कल्याण हो जाए, उसका भी कल्याण, चाहे आज विरोधी है, कितना भी विरोधी है। एक माता है, उसका पति उसको 20 साल तक सताता है, बाधा डालता है उसके मार्ग में, सेंटर पर नहीं जाने देता, मारता है, गालियां देता है, सारे ब्रह्मा कुमारी इसको गालियां देता है, और 20 साल के बाद वो ज्ञान में आ जाता है। मतलब वो 20 साल जब विरोध कर रहा था तब भी देवकुल की ही आत्मा थी, थी कि नहीं थी, तब तो आया बाद में, तो जब वो विरोध कर रहा था तो क्या उससे लड़ाई करे, झगड़ा करे, क्या करे। शुभ भावना, शुभ कामना जी। फिर है एच, एच अर्थात होली कंपनी, अर्थात सत्संग। जब ऐसा कोई सत्संग हो, गैदरिंग हो, उसमें हमेशा आना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये तो होते ही रहता है, चलो सुनाने वाला कुछ भी सुनाए, उसको सुनने के लिए नहीं, इस संगठन के बल के लिए। मुरली मोबाइल पर सुन सकते हैं, मोबाइल पर पढ़ सकते हैं, सब जगह आ जाता है, एक दिन पहले ही आ जाती है मुरली तो आजकल, आज सुबह दूसरे दिन की मुरली आ जाती है। सत्संग, सत्संग में जाना, प्रथम भगति संतर्क संतन कर संगा, दूसरी मम कथा प्रसंगा। मानस में श्री राम शबरी को सुनाते हैं, हे शबरी सुन, नवदा भक्ति मैं तुझे सुनाता हूं, 9 प्रकार की भक्ति। पहली, प्रथम भगति संतन कर संगा, जो महान आत्मा है, जो संत है, उनका संग करना, उनके संग में रहते रहते ही परिवर्तन हो जाएगा, उनके श्रेष्ठ संकल्प विचार वाइब्रेशंस प्रभावित करेंगे। दूसरी मम कथा प्रसंगा, मेरी कथा सुनना, ये दूसरी भक्ति। पहली सत्संग, रामायण की नवधा भक्ति अलग है, महाभारत की नवधा भक्ति अलग है, भागवत की नवधा भक्ति अलग है, उसमें भी प्रकार है। तो सत्संग कहाँ मिलेगा, ब्राह्मण परिवार में, कहाँ मिलेगा सेंटर पर, कहाँ मिलेगा मधुबन में, कहाँ मिलेगा जब भी कोई प्रोग्राम होगा वहां पर जाकर केवल बैठ जाना। कोई बहुत दुखी है, उदास है, ट्रीटमेंट क्या है, ऐसे संगठन में आकर बैठ जाओ, बस अपने आप मूड ठीक हो जाएगा. तो जी एच होली कंपनी, एच एच के बाद आई. आई इंग्लिश में शब्द है इनकल्केशन ऑफ वर्च्यूज. इनकल्केट मतलब धारण करना, दिव्य गुणों को धारण करना. आई इनकल्केट अर्थात धारणा करना. यह सबको पता है, इसके लिए इसका विस्तार नहीं करेंगे. एक एक गुण देखना है कौन सा मेरे में नहीं है. पंक्चुअलिटी मेरे में नहीं है. हमेशा ही लेट आने की आदत है किसी को, चाहे कुछ भी हो जाए लेट तो आना ही है. कौन कौन है हाथ खड़ा करो थोड़ा, इधर उधर बाकी लोग देखना नहीं उसको. संस्कार ही बन गया है, लेट आना ही है. एक चर्च में एक पादरी फादर रिटायर होने होता है, लास्ट डे होता है, तो उसके सम्मान में आयोजन में एक उस सिटी का जो मेयर होता है उसको बुलाया जाता है. तो वेट करते रहते कब आएंगे मेयर साहब, और उसके बाद में फिर प्रोग्राम चालू होगा. तो मेयर जी आते ही नहीं है. तो वो फादर कहते चलो मैं ही अपना पहले भाषण दे देता हूँ. तो वो भाषण देना चालू करते हैं और कहते हैं कि जब मैं, आज मेरा अंतिम दिन है इस चर्च में, अब मैं जाने वाला हूँ, मुझे मेरा पहला दिन याद आता है, सबसे पहला दिन जब मैं पहली बार इस चर्च में आया था. उसी दिन एक ऐसा व्यक्ति आया, और क्रिश्चियन धर्म में कन्फेशन होता है अपने सारे पाप कबूल करना पादरी के सामने कि मैंने ये पाप किए, कन्फेशन. तो एक ऐसा व्यक्ति आया और उसकी कहानी सुन के तो मैं दंगी रह गया. इतने उसने पाप किए थे, ऐसा शायद ही कोई पाप था उसका जो उसने नहीं किया होगा. व्यभिचार से लेके सब कुछ उसने किया था. और मैं इतना आश्चर्य हो गया कि इस गांव में कैसे कैसे लोग हैं ये. ऐसा वो व्यक्ति था. और उसने कहा था ये कृपया आप किसी से मत कहना, मैं खाली आपसे कह रहा हूं. पर उसके वो बातें सुनकर मुझे लगा यहां सभी ऐसे. परंतु अच्छी बात यह है कि उसके बाद ऐसा इतने 50 साल में ऐसा कोई भी नहीं आया, वो एक ही व्यक्ति था. वैसा पहला इंप्रेशन ही खराब था इस गांव का. ये भाषण देता है और बैठ जाता है, ठीक है. फिर मेयर साहब आते हैं, लेट हो जाते हैं थोड़ा. अब उनकी भाषण की बारी होती है. तो वो कहते हैं आज आप सबके सामने मुझे बहुत गर्व हो रहा है ये बात आपको बताते हुए कि मैं फादर इनके सामने पहला व्यक्ति था जो आकर जिसने कन्फेशन किया था. मुझे मेरा वो दिन याद आ रहा है. बाद में तो पब्लिक लाइफ में सब तो जानते ही आप, मैंने क्या क्या रोड बनवाए, सड़क बनवाए, ये किया वो किया, फला किया ढला किया. पर आज जब ये जा रहे तो मुझे वो पहला दिन याद आ रहा है कि मैं ही पहली बार इनके पास आया था. टाइम से ना आना, पंक्चुअलिटी, प्रोक्रेस्टिनेशन. कौन सा वो गुण है जो मुझ में नहीं है? सीरियसनेस, डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी. धारण करो. कहां पहुंच गए हम? आए. उसके बाद है जे. जे अर्थात जर्नी टू मधुबन. सुबह हमने जो कहानी सुनाई थी, हमारी कहानी थोड़ी अलग थी, परंतु नियम ऐसा है. प्रॉपर चैनल से ही जाना चाहिए. कई लोग वहां पर दोस्त बना के रखते हैं और डायरेक्ट सेंटर को बाईपास करके वहां पहुंच जाते हैं. मधुबन में जाना ये एक मर्यादा है, प्रॉपर चैनल से ही जाना है, परमिशन लेकर ही जाना है. और वहां जाने के बाद में भी वहां के नियम मर्यादा है मधुबन के. वहां जाकर मधुबन निवासियों के अवगुण नहीं देखने चालू कर देना. वहां ये ऐसा करते हैं, वहां ऐसे करते, भोजन में ये लोग बात करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं. यहां तपस्या करने आए हो या मधुबन निवासियों के अवगुण देखने आए हो? उनकी एनालिसिस करने वहां जा रहे हो? उनका जज बनने वहां जा रहे हो या खुद की तपस्या करने? कोई लोग वहां जाते हैं और बस शॉपिंग, साइट सीइंग, भोजन, नया क्या बनाना है आज, बस उसमें डूब जाते हैं. तपस्या रह गई बाजू में और यही सारी चीजें कर रहे हैं. एक बार माताओं का एक ग्रुप मधुबन गया था. दादी प्रकाशमणि ने कहा था यज्ञ के थोड़ा सा कुछ सेवा होगी, कोई जितना माताएं दे सकती है दे दे. माताओं ने कहा था नहीं दादी, हम बहुत गरीब है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, रोने लगी। हाँ दादी ने कहा ठीक है चलो कोई नहीं। और वही सारी माताएं मार्केट से अपने बहुओं के लिए साड़ी जेवर सब कुछ लेके आ रही है, उसके लिए सब है, इसके लिए कुछ नहीं है। मधुबन में जा रहे हैं और घूमने फिरने में टाइम जा रहा है, इसको मिल उसको मिल उसको मिल उसको मिल उसको मिल उसको मिल, भगवान से मिलने गए वो रह गया बाजू में। मधुबन में गए वहां जाते ही सारा व्यर्थ की बातों में लगे हुए हैं, बाबा से मिलने गए और सारा व्यर्थ की चीजें कर रहे हैं, इधर जा रहे उधर जा रहे, साइड सीन पीछे सामने तो पूरा माया नगरी खड़ी हुई है शांतिवन के, शॉपिंग आधा समय तो लोगों का वहीं चला जाता है, फिर बाबा से भी मिलते हैं ये करते वो करते और सेंटर पर आकर अनुभव सुनाते, हम बाबा के प्यार में खो गए थे बाबा के सामने। और वहां जाके भोजन साइट सीन टोली और मिलना यहां वहां, बस यही चालू था। जिस चीज के लिए गए थे वो की नहीं। मधुबन का नियम है जाओ तो लक्ष्य बनाकर जाओ कि मुझे तपस्या करनी है, मैं वहां पर बिल्कुल व्यर्थ नहीं करूंगा, जो मिल जाए वहां पर भी ये भोजन ठीक नहीं है, इसमें नमक कम है, इसमें ये ज्यादा है, इसमें वो कम है, इसमें वो कम है, यहां नल पानी नहीं आता है या ठंडा पानी आता है, हमको अच्छा कमरा नहीं मिला, हमको वो कमरा नहीं मिला। 20 माताओं के साथ एक कमरे में रहना बहुत बड़ी परीक्षा है, पर मार्क्स भी ज्यादा है उसके। टेंट में रहने वाले सेंट बनेंगे बाबा ने कहा है, टेंट में रहने वाले सेंट बनेंगे सेंट। इसके लिए खाना खराब, बिस्तर कठोर, घर जाना पता था, M for J for journey to Madhuban, K for keeping the chart keeping the chart, अपना एक चार्ट चाहिए, 6 मास का क्या प्रगति हुई और 1 हफ्ते का हर दिन का, सोने से पहले एक अपना चार्ट बनाओ, वो नहीं जो रेडीमेड बनकर आता है कहीं से, वो छोड़ो, अपना नया अपना खुद बनाओ, मेरी दिनचर्या अनुसार। अमृत वेला उठे कैसा था, साधारण नींद वाला मुरली, कॉन्सेंट्रेशन था या भटक रही थी बुद्धि, सारी दिनचर्या में भोजन बनाते समय क्या स्थिति थी, ट्रैवलिंग में कैसे थे, यहां वहां नजर जा रही थी कि कुछ ज्ञान का चिंतन चल रहा था, ऑफिस में कैसे थे, घर में कैसे थे, रात में स्थिति कैसी थी, मुरली कितनी बार पड़ी, कोई पॉइंट का चिंतन किया या बस ऐसी चली गई। थोड़ा सा लिखो 5 मिनट, अगर चार्ट नहीं लिखना है तो डायरी तो लिखो, कम से कम एक लेटर डायरी में, बाबा आज मैंने ये किया, आज ऐसा किया वैसा किया, केवल डायरी एक लेटर प्रभु के नाम, छोटा सा, आज की तारीख टाइम 10 बज गए रात को और लिख रहे सुबह ये किया ये किया ये किया ये किया ये किया, गुड नाइट, बस डायरी। किसी को चार्ट लिखना बहुत भारी लगता है, अरे बाप रे 4 दिन लिखेंगे फिर छोड़, लिखेंगे फिर छोड़ देंगे, खत तो लिख सकते हैं, 1 letter a day सोने से पहले थोड़ा सा लिख दो, अच्छा लिखना ही नहीं है तो बैठ के खाली बता दो वो भी ठीक है, चार्ट। फिर उसके बाद में के बाद एल, एन एल, लव फॉर बाबा, भगवान से प्यार, इसमें बहुत सारी बातें आती है, बाबा से प्यार अर्थात केवल इतना नहीं, हमारा तो बाबा से बहुत प्यार है, इससे नहीं होगा, हम तो छाती फाड़ के दिखाते तो अंदर मेरा बाबा ही लिखा हुआ है। नॉट एवरी वन हु कमेथ एंड सेथ लॉर्ड लॉर्ड बट ही दैट डूएथ द विल ऑफ माय फादर शैल एंटर द किंगडम ऑफ हेवन, बाइबल में लिखा है हर एक वो नहीं जो आकर कहता है हे प्रभु, बट ही दैट डूएथ द विल ऑफ माय फादर, वो जो मेरे पिता की श्रीमत पर चलता है, ही अलोन कैन एंटर इनटू द किंगडम ऑफ हेवन। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, ये मुख का सौदा नहीं है, दिल का सौदा है। बाप से प्यार अर्थात पहला मुरली से प्यार, बाप से प्यार अर्थात दूसरा मधुबन से प्यार, बाप से प्यार अर्थात तीसरा श्रीमत से प्यार, बाप से प्यार अर्थात चौथा ब्राह्मण परिवार से प्यार, बाप से प्यार अर्थात पांचवा इस यज्ञ से प्यार, बाप से प्यार अर्थात छठवा राजयोग से प्यार, बाप से प्यार अर्थात सातवा सेवा से प्यार। ये सात चीजों से प्यार है अर्थात बाप से प्यार है। इनमें से एक भी पॉइंट यदि कम है अर्थात हम बाप से प्यार नहीं करते, झूठा प्यार है, खोटे सिक्के हैं। पहला मुरली, मुरली से प्यार अर्थात मुरली धर से प्यार, दूसरा मधुबन से प्यार, तीसरा श्रीमत से प्यार, चौथा यज्ञ से प्यार, चौथा पांचवा ब्राह्मण परिवार से प्यार, छठवा राजयोग, जो रोग योग जो प्राचीन योग उसने सिखाया है यदि हम उसका अभ्यास नहीं कर रहे हैं तो उससे प्यार नहीं है। लास्ट सेवा, हमको बाबा से बहुत प्यार है पर सेवा मत बताओ, हमारे पास टाइम बहुत कम है, टाइम नहीं, हम बहुत बिजी है, किसी और को बता दो, अगली बार हम आएंगे, अगली बार हम करेंगे। एल एम एम अर्थात, एम अर्थात बाबा तो हो गया, हाँ मुरली। वैसे तो लव फॉर बाबा में आ गया परंतु फिर भी मुरली का अपना महत्व है। मुरली यहां हम खाली सुनने और पढ़ने की बात नहीं कर रहे, मुरली चिंतन, मुरली मनन, मुरली अध्ययन, मुरली की चर्चा। एम और सेवा केंद्र में आकर, घर पर बैठ के नहीं, हाँ कोई विशेष कारण है तो दूसरी बात है, सुनना इधर, यहां आकर सुनना, सेवा केंद्र पर आकर सुनना अर्थात उस वायुमंडल के परिधि में के अंदर हम जा रहे हैं। एक घंटा एक जगह बैठने का अभ्यास हो रहा है, एक घंटा मन थोड़ा तो एकाग्र हो रहा है, नहीं तो घर में पढ़ेंगे तो लोग 5 मिनट में खत्म कर लेते मुरली पढ़ना, फटाफट पढ़ते हैं, ऐसे ही चालू की और बीच का थोड़ा छोड़ दिया, अरे वही ये बाप आए हैं, तुम्हें घर चलना है, विनाश सामने खड़ा है, काम आदि मध्य अंत दुख देता है, तुम्हें दिव्य गुण धारण करना है, संसार में रावण को जलाते हैं, रावण कभी जलता नहीं है, सतयुग आ रहा है, तुम्हें देवी देवता बनना है, तुम्हें बाप समान भी बनना है, ये तुम्हें बाप समान भी बनना है, तुम्हें देवी देवता बनना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें करना मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति धारणा के लिए मुख्य सार, तुम बच्चों को अटेंशन रखना है, तुम्हें दिव्य गुण धारण करने हैं, दूसरा पॉइंट तुम्हें आत्माभिमानी देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है, जैसे बाप सबको दाता है देता है तुमको भी सबको देना है, फुल स्टॉप वरदान, भटकती हुई बुद्धि को फुल स्टॉप लगाने वाले तुम मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हो, उसके अंदर का भी पता है क्या है, मास्टर सर्वशक्तिमान अर्थात जब चाहो जहां चाहो अपनी बुद्धि को लगा दो टोंग टोंग टोंग, और फिर उसके बाद में स्लोगन और फिर बंद, आज का काम पूरा हुआ, हटाओ इसको अब कल देखेंगे, संतुष्टता हो जाती है, हाँ हो गया हो गया, अगर नहीं पढ़े तो बेचैनी रहती है, आज का नहीं आज की मुरली है क्या, आज की मुरली, अरे ये कल की, अरे कल की मुरली नहीं चाहिए आज की चाहिए, कल की लो ना कल की, नहीं नहीं कल की बिल्कुल नहीं, ताजा माल चाहिए। एम एन फॉर नॉट सीइंग वल्गैरिटी, अश्लील साहित्य, अश्लील दृश्य, अश्लील मूवीज फिल्म्स बुक्स नॉवेल्स पोस्टर्स, वहां से ही माया आती है, कब प्रवेश कर जाए पता ही नहीं चलता है। वो तो अपने घर में बैठी थी माया, हमने गए खटखटाया, वो तो रजई लेकर सोई पड़ी थी माया, हमने कहा चलो ये निमंत्रण पत्र है आ जाओ, फिर घर में बुलाया, चाय पानी पिलाया, सीट पर बिठाया, हम सीट से नीचे उतर गए, और फिर माया कहती है मैं दोषी नहीं हूं, लास्ट संडे की मुरली तुमने बुलाया, आह्वान किसने किया, मैं तो आना ही नहीं चाहती थी, घसीट घसीट कर तुम लेके आ गए, और फिर सोचते ये संकल्प कहां से चल रहे हैं, ऐसा क्यों लग रहा है, अभी तक तो ठीक लग रहा था, अचानक ये भाव क्यों परिवर्तन हो गया इस बहन के प्रति। राखी बांधने वाले हाथ को ही पकड़ने का संकल्प नहीं कर लेना, obeying all rules and regulations, obedience, जो नियम मर्यादाएं इस यज्ञ में बने हुए हैं उनका पालन भी करो तो मार्क्स मिलेंगे। O for obedience या O for obeying or observing rules, regulations, principles, क्योंकि मनुष्य ने नहीं बताया ये नियम, किसी धर्मगुरु ने नहीं बताया, किसी शंकराचार्य इमाम अवतार पैगंबर पयंबर मैसेंजर प्रोफेट गीता निराकारी मत का शास्त्र है। अभी अभी मुरली चली थी, गीता क्या है, निराकारी मत का शास्त्र है। अगला पी, पी फॉर प्रिंटिंग लिटरेचर, बहन को बिना पूछे खुद ही लिटरेचर बना प्रिंट कर लेते हैं नियमावली में, ये बहुत महत्वपूर्ण नियम है सेंटरों के लिए, बिना पूछे अपने हिसाब से ही मैटर डाल देंगे, अपने हिसाब से ही डिसाइड करेंगे कौन चीफ गेस्ट और कौन क्या, दबाव डालेंगे इसी को बुलाओ उसी को बुलाओ, अपने हिसाब से सब कुछ करेंगे, अपने हिसाब से पर्चियां किताबें बुकलेट सब कुछ छपवाएंगे, ये तो शायद कम होगा पर कहीं कहीं है, ये भी नियम है। क्यों, क्यों अर्थात जो कंपनियों में काम करने वाले उनको ज्यादा समझ में आएगा, क्वालिटी अश्योरेंस क्वालिटी कंट्रोल, जो भी हम करें उसमें प्रॉपर क्वालिटी अनुसार होना चाहिए, अर्थात जिसमें कुछ सेट, जैसे ISI मार्क होता है क्वालिटी का इंडिकेटर है, उसी तरह ज्ञान योग धारणा सेवा क्वालिटी अश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल हमारी हर चीज में होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि ऊपर ऊपर से एक सेवा कर ली, कहा कि ये कर लो, कर तो दिया पर बेमन से कर दी, बहन जी ने कहा इसके लिए कर दिया और भागे, जैसे एक माता फटाफट कोर्स समझाती है, कोर्स में है ये चित्र है, ज्ञान में आने से पहले ये देखो फटाफट, उसके बाद टाइम कम है उसका टाइम लेट हो रहा, ज्ञान में आने से पहले रोटियां खाते थे अब ज्ञान में आ गए अभी पूरियां तल रहे हैं, आगे बढ़ो, वो चित्र वैसा ही है हमने देखा है ना कोर्स का किताब, हाँ ज्ञान में आने से पहले ये कर रहे थे अभी ये कर रहे, चलो आगे बढ़ो, ज्यादा प्रश्न नहीं पूछो मुझे जाना है काम, फटाफट फटाफट फटाफट। क्वालिटी चाहिए हर चीज की। क्यू, आर, आर फॉर रिलेशनशिप, इसकी थोड़ी चर्चा हमने सुबह की थी, जो भी हमारे संबंध हो कैसे हो, उसमें डिटैचमेंट कैसे हो, वो जिसमें न्यारापन हो पवित्रता हो, केवल और केवल ऐसे संबंध ना बना के रखे कि जिसमें आसक्ति हो मोह हो फैमिलियरिटी हो, सारे रिलेशंस को धीरे धीरे न्यारा करते चलो, कोई भी हो, बच्चा है, पति है, जो भी है. बाइबल में एक जगह लिखा, ही दैट लवेथ हिज मदर एंड फादर मोर देन मी इज नॉट वर्दी ऑफ मी, ही दैट लवेथ हिज ब्रदर एंड सिस्टर मोर देन मी इज नॉट वर्दी ऑफ मी. वो जो अपने माँ बाप को मेरे से अधिक प्यार करता है मेरे लायक ही नहीं है, वो जो अपनी बहन और भाई को मेरे से अधिक प्यार करता है मेरे लायक नहीं है, केवल मुझसे प्यार करो. आई thy लॉर्ड thy गॉड एम अ जेलस गॉड, मैं जो तुम्हारा परमात्मा हूं बहुत ईर्ष्यालु परमात्मा हूं, मेरे अतिरिक्त किसी से प्यार मत करना. 86 या 87 की एक मुरली है, मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी. बाप कहते हैं, बाप है मियां और तुम हो बीवी, परंतु बीवी जब किसी और का हाथ पकड़ के जाती है तो बाप को बेचैनी होती है और हलचल होती है. पढ़िए मुरली, संबंध जो है उसमें फ्रेशनेस तभी रहेगी जब उसमें डिटैचमेंट है. हम हमेशा एक बात सुनाते हैं, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने एक कहानी लिखी है, द लास्ट पोएम, शोशीर कविता, बंगाली में लिखी है. उसमें एक स्त्री है, एक पुरुष है. उस स्त्री को उस पुरुष से बहुत प्रेम है, पुरुष को भी स्त्री से बहुत प्रेम है, दोनों ही शादी करना चाहते हैं. स्त्री बहुत अमीर है, वो जो लड़का है, वो जो युवक गरीब है, शादी दोनों करना चाहते हैं. परंतु वो स्त्री कहती है, वो कन्या कहती है, मेरी एक शर्त है, हम शादी तो करेंगे परंतु साथ में नहीं रहेंगे शादी के बाद. वो कहता है, व्हाट, शादी के बाद साथ नहीं रहेंगे, शादी ऐसी कैसी शादी है ये. वो कहती है, बस शादी करूंगी तो मैं ऐसी ही करूंगी, तुम्हारे लिए एक महल मैं बना के दूंगी उस ओर, बीच में झील और मैं इस ओर रहूंगी, बीच में कभी मिल लिए तो मिल लिए, तुम उधर से नौका विहार बोटिंग कर रहे हो, मैं इधर से बोटिंग कर रही हूं, मिल लिए बात कर लेंगे, पर तुम रहोगे उधर मैं रहूंगी इधर. वो कहता है, ऐसा कैसी शादी है. वो कहती, शादी करूंगी तो ऐसी ही करूंगी, हाँ अगर तुम्हें नहीं करनी है तो ठीक तुम किसी और से कर लो, पर मैं तो केवल तुमसे प्यार करती हूं और तुम्हारी याद में ही ऐसी ही रहूंगी. वो कहता है, अब क्या करूं. वो बोलते, आखिर क्यों. वो कहती है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हमारे जो प्रेम है और जब हम समीप आ जाए और एक साथ रहने लगे, हो सकता है कि हम एक दूसरों के अवगुण देखने लगे, वो जो फ्रेशनेस इन द रोमांस है वो कम हो जाए, वो जो संबंधों में अभी जो एक निरागसता है, निर्विकारिता है, वो कम हो जाए, खत्म हो जाए. इसके लिए तुम उधर मैं इधर, बीच में झील, चाहे सेवा केंद्र में रह रहे, चाहे घर में, चाहे ऑफिस में, तुम उधर हम इधर, बीच में झील. डिटैचमेंट, इमोशनल डिटैचमेंट, नहीं तो दुख होता है जहां बहुत ज्यादा घनिष्ठता है. अगला, क्यू आर एस, एस फॉर श्रीमत. ये मत कहना कि मुझे पता नहीं था, श्रीमत हमें पता चाहिए और श्रीमत छिपी हुई है मुरलियों में, निकालना है, क्या क्या करना है. एस टी, टी फॉर, ये सभी गृहस्थियों के लिए है बहुत जरूरी, ट्रस्टी. लास्ट संडे की मुरली, अधर कुमारों से मुलाकात. बाबा ने तुम्हें भक्ति की मेहनत से छुड़ा दिया, भक्ति में झंझट धक्के खाते रहते थे, यहां वहां घूमते रहते थे, यहां तुमको ज्ञान दाता मिल गया. दूसरा, गृहस्थी की झंझट से छुड़ा दिया, ट्रस्टी बन गए. ट्रस्टी समझना, ये घर बाबा का, ये गाड़ी बाबा की, ये पैसे उसके. आप विदेश में अगर जाओ तो वहां पर वो हर चीज में ऐसा ही कहते, दिस इज बाबाज होम, दिस इज बाबाज कार, दिस इज बाबाज गार्डन, हर चीज में. कोई भी चीज मार्केट से खरीद के लाएंगे, पहले बाबा के फोटो के सामने रख देंगे, फिर हम यूज करेंगे. सैलरी आएगी, रख दी, फिर यूज करेंगे. अब उसने हमको दी है ट्रस्टी, हमारा कुछ भी नहीं है, दिया गया है. जैसे बैंक का मैनेजर, बैंक में काम करने वाले कैशियर पैसे गिनते रहता है दिन भर, पर उसको पता है ये पैसे मेरे नहीं है, मेरी अपनी सैलरी आएगी. उसको खुशी होती है कि अरे आज बहुत सारा डिपॉजिट आ गया, आज कितने लोगों ने जमा कर दिया मेरे बैंक में, उसको उसकी कोई खुशी नहीं, और बैंक से कई सारे लोग विड्रॉ करके लेके गए, उसको दुख होता है? वो स्थिति है ट्रस्टी की, न्यासी। सन्यास शब्द भी वहीं से निकला है, सन्यास, न्यास अर्थात ट्रस्टी। टी, टी के बाद यू, यूजिंग टाइम एंड अदर रिसोर्सेस केयरफुली। यूजिंग यज्ञ की जो भी छोटी छोटी चीजें उनका ध्यान से उपयोग करना, ऐसा नहीं नल चालू है हम क्यों बंद करें, चलने दो, ऐसा नहीं कमरा छोड़ कर गए और लाइट चालू है और एसी चालू ही है और पता ही नहीं, चार दिन के लिए बाहर जा रहे, घर का भी फैन चालू ही रख दिया, हमारा काम नहीं है। सेवा केंद्र में भी छोटी छोटी चीजों की बचत करना, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी। किसी किसी की आदत होती है बाथरूम में घुस गए तो कौन देखता है, आठ आठ बकेट पानी नहाते ही रहते हैं एक एक घंटा तक, पानी की बचत, इलेक्ट्रिसिटी की बचत, टाइम की बचत। बैठ गए किसी के साथ और बातें चालू हो गई, पॉलिटिक्स, इसने क्या किया, उसने क्या किया, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। यू, यू के बाद वी, वी अर्थात विजिटिंग सेंटर्स। एक सेवा केंद्र से जब दूसरे सेवा केंद्र में जा रहे हैं तो क्या लेटर की आवश्यकता है, ऐसा नहीं हमारी तो जान पहचान है, हम तो ऐसे ही दूसरे सेंटर पर जा रहे हैं और वहां रह रहे हैं, सारा ध्यान रखना है वहां पर। जिस कमरे में रह रहे हैं वो कमरा छोड़ते समय उसी हालत में हो जैसा हमको मिला था, नहीं तो सारा सामान बिखरे हुआ, बाथरूम को खराब कर दिया है और वैसे ही छोड़ के जा रहे हैं, जो चादर थी उसमें वैसी ही हो बिना सिलवटों के जैसे हम आए थे, जो कचरा इधर उधर डाल के रखा है वो सारा साफ करके जाना है जैसे मेरा ही घर है, और प्रॉपर परमिशन के साथ। विजिटिंग सेंटर, यू वी, वी के बाद डब्लू, डब्लू अर्थात वर्ल्डली अफेयर्स, वर्ल्डली टॉक्स, वर्ल्डली डिस्कशंस सेंटर के अंदर बैठकर नहीं करने, वर्ल्डली डिबेट्स, दुनियावी चर्चाएं, दुनियावी बातें, दुनियावी अफेयर। कई लोगों की आदत है, एक भाई हम एक सेंटर पे गए थे, वो कहते हैं अपनी क्लास में ये जरूर बताना आप, मैंने कहा क्या बताना है, वो कहते कुछ भाई है मुरली जैसे ही पूरे हो जाती है तीन चार लोग मिलके बैठ जाते हैं और बस चर्चा चालू हो जाती है राजनीति की, कांग्रेस का क्या हुआ और बीजेपी का क्या हुआ, डेली का है। मुरली पूरी हुई, ज्ञान योग पूरा हुआ, अब बैठकर चेयर डालकर चर्चा चालू कर देते हैं। यहां किस लिए आए हैं, तपस्या करने या कुछ और करने, ज्ञान धारण करने या वही संसार की सारी बातें यहां लाने, वर्ल्डली टॉक्स, वर्ल्डली डिस्कशन, वर्ल्डली फैशन, वर्ल्डली डिबेट्स की चर्चा, ये श्रीमत नहीं है। डब्ल्यू के बाद एक्स, एक्स से क्या होगा आप सोचो, मुश्किल शब्द है। एक्सरे, एक्सलेंट, राइट। एक्सरे अर्थात स्वयं का एक्सरे करना, अर्थात स्व चेकिंग, अर्थात सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ, स्व का विश्लेषण, सेल्फ अकाउंटिंग, खुद की आत्मा का एक्सरे करना कि मैंने सारे दिन भर ये मर्यादा है, चेकिंग, कोई गलती तो नहीं की, किसी को दुख तो नहीं दिया। एक्सरे। अगला वाई, वाय अर्थ योग, योगा इंग्लिश में। हर एक को दो बार योग में बैठना ही है, एक अमृत वेला और दूसरा नुमा शाम। इस सभा में कितने ऐसे हैं जो नुमा शाम का योग रेगुलर करते हैं, बहुत है। अच्छा इस सभा में ऐसे कितने हैं जिसने लास्ट वन मंथ में एक बार भी अमृत में लविस नहीं किया, एक बार भी नहीं। ध्यान से, इंद्र सभा है। पंद्रह दिन में जिसने एक बार भी अमृत वेला मिस नहीं किया, हाथ खड़ा करो जो पंद्रह दिन में एक बार भी अमृत वेला जिन्होंने मिस नहीं किया। अच्छा पिछले एक हफ्ते में जिसने एक बार भी अमृत वेला मिस नहीं किया। अच्छा आज भट्टी का दिन है और जिसने आज ही अमृत वेला मिस करा वो दो बार तो बैठना ही है। सुबह पहले सुबह को ठीक करो, फिर धीरे धीरे शाम को ठीक करो, और फिर बीच का जो टाइम है दिनचर्या का उसको भी ठीक करो। नमाज शाम का योग भी शक्तिशाली होना चाहिए, 6:30 से 7:30 या 7 से 7:30। अगर कोई ट्रैवल में है, ऑफिस में है, कहां पर भी है, कुछ तो करे, याद करे, कम से कम बात कर ले बाबा से, या फिर मुरली की जो पॉइंट्स लिखी है 3-4 उसको ही रिवाइज कर ले। लास्ट वाई जेड क्या होगा? जीरो बाप के साथ तो योग हो गया ना। जेड अर्थात झील, झील अर्थात उमंग उत्साह, झील एंड जेस्ट। सेवा करनी है तो उमंग उत्साह से करो, यज्ञ का जो भी काम करना है उमंग उत्साह से करो, ज्ञान योग धारणा सेवा। तो ऐसी ये ए से लेकर तो जेड तक क्या है, ये सारी ब्राह्मण जीवन की मर्यादाएं। एक क्लास और है क्या हमारे पास? समय है 15-20 मिनट। एक क्लास, एक टॉपिक दूसरा और ले सकते हैं कि हो गया टाइम? हो गया, या खाली नाम गिना देते हैं? चलो एक योग का गीत बजेगा कोई भी, उसमें ए से लेकर अपने मन में एबीसीडी। किसको नहीं आती हाथ खड़ा करो, कोई माता है? क्लास के बाद पता चला कि एबीसीडी नहीं आती सबको तो आती है ना, तो हाँ ये बहुत, इसके लिए हमने वो विशेष अलग से पॉइंट लगा, वी अर्थात विजिटिंग अदर सेंटर। इसमें बहन जी से पूछकर क्लास करने जाना है, वो लेटर या पूछकर जैसे भी है उसके अंदर ही जाना है आज के समय के अनुसार, क्योंकि इसमें बहुत सारी दूसरे प्रकार की बातें आ सकती है शायद जिनका आपको पता ही नहीं होगा, ऐसी भी कुछ बातें हैं। आपको लग रहा है ये छोटी सी बात है पर इसमें कुछ बड़ी बड़ी बातें, कुछ गड़बड़ हुई है, वो ना हो इसलिए।